हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधिका रमन राधिका रमन राधिका रमन जय राधिका रमन कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 गौर हरिबा हरिबोल हरिबोल गौर हरिबोल।
तो आज से लगभग 53 साल पहले इस्कॉन की स्थापना हुई है इस पृथ्वी में। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया श्री रूप गोस्वामी ने, और स्थापित कैसे किया, इस्कॉन की स्थापना करके। इस्कॉन की स्थापना नहीं होती तो पूरे पृथ्वी में स्थापना कैसे हो पाती। तो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इस्कॉन में। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना, कृष्ण भावना के लिए प्रभुपाद ने संस्था स्थापित की है। कृष्ण भावना भावित होने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई है। और ये कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। और श्रील प्रभुपाद ने ये शब्द चुना कहां से, प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये शब्द यहां से चुना, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यत कुतो भिलभ्यते तत् तत्र अपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, यानी कृष्ण भक्ति रस में मग्न रहना, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यानी कृष्ण भक्ति रस में मग्न रहना, या कृष्ण भक्ति रस में मग्न हो रहते हुए भक्ति करते रहना, सेवा करते रहना। तो इस प्रकार ये कृष्ण भावना भावित होना एक बहुत बड़ी बात है। उस कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने हेतु हम कई कार्य में लग रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। उस स्तर तक पहुंचने के लिए कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने हेतु, ताकि ऐसा समय आए कि कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करते हुए हम सेवा करें, ऐसे स्तर पर पहुंचने के लिए हमारा ये प्रयास है। और प्रभुपाद ने इसके लिए स्थापना की है संस्था की। एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस संस्था का कि कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करना। और जब तक कृष्ण भक्ति रस नहीं प्राप्त होगा हमें संसारिक तथाकथित रसों में फंसे रहे। और इसलिए प्रभुपाद ने यह शब्द का बहुत सोच समझ के उपयोग किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम हर चीज के लिए कृष्णा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हर परिस्थिति में कृष्ण भावना भावित रहना पड़ेगा। ये कला, ये प्रशिक्षण श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दी है कि हर परिस्थिति में कैसे हम कृष्ण भावना भावित रहे, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा। श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं भक्ति रसाम सिंधु में कि मन के द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, उनका, उनके रूप का स्मरण करना, उनके गुणों का स्मरण करना, उनके लीलाओं का स्मरण करना, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा कृष्ण कथा करना, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करना, वाणी का उपयोग प्रचार में लगाना, प्रचार के कार्य में लगना, शरीर के द्वारा कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इस तरह से कृष्ण भावना का अनुशीलन होना चाहिए। अनुकूल भाव से अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। जिस तरह से भगवद गीता का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण भावना का अनुशीलन करना अनुकूल भाव से, यह भगवद गीता की शिक्षा है। श्रीमद् भागवतम की भी यही शिक्षा है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति की स्थापना करना, यह भगवद गीता का उद्देश्य है, श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है, चैतन्य चरितामृत का उद्देश्य है और हमारी संस्था का भी यही उद्देश्य है। भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान कृष्ण या श्रील वेद व्यास जी शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत के माध्यम से भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, और इसी तरह से श्रील प्रभुपाद भी इस्कॉन के माध्यम से शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है इस संस्था को शुरू करने का, यानी कि श्रील प्रभुपाद जी का और कोई उद्देश्य नहीं है, शुद्ध भक्ति की स्थापना करना। प्रभुपाद ने यह संस्था बनाई शुद्ध भक्ति की स्थापना करने के लिए, ताकि हम सीख सके इस संस्था में आकर हम कैसे शुद्ध भक्ति करें। इसलिए प्रभुपाद ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया, भक्ति रसामृत सिंधु। आप देखेंगे इस ग्रंथ में, पूरे ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पूरा उन्होंने चेष्टा की है, प्रयास किया है, और हर जगह कई शास्त्रों से उद्धरण देकर, श्रीमद् भागवतम से, पुराणों से, अन्य शास्त्रों से उद्धरण देते हुए बार 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 शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति से नीचे कुछ है ही नहीं उनके लिए, वो ग्रंथ का शुभारंभ जो है शुद्ध भक्ति से ही होता है। जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए वो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, और इसी तरह से यह संस्था है। इस्कॉन की स्थापना भी शुद्ध भक्ति करने के लिए की गई है। कोई पूछ सकता है हम शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो शुद्ध भक्ति करें कैसे? तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी सुझाव दे रहे हैं कि शुद्ध भक्त ना होते हुए भी कैसे शुद्ध भक्ति कर सके, ये कला सिखा गई है इस ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में। शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए भी शुद्ध भक्ति करना होगा। बड़ी आश्चर्य की बात, हम तो कह रहे श्रद्धा साधु संग अथवा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्याद, तब जाके हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच पाएंगे, अनर्थों से अभी निवृत्ति नहीं हुए हैं तो कैसे शुद्ध भक्ति करें। इसलिए प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर, ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में एक प्राकृत भक्त भी जो है शुद्ध भक्ति कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ में। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए भी हमें शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा। ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में रहकर जब शुद्ध भक्ति करेंगे तब शुद्ध भक्त बनेंगे। कहने का अर्थ है कि प्राकृत अवस्था में भी शुद्ध भक्ति करनी होगी हमें, अगर शुद्ध भक्त के, शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचना है, तो संभव ही नहीं है निष्ठा के स्तर पर पहुंचना। अगर हमने शुद्ध भक्ति नहीं की प्राकृत अवस्था में तो कभी भी निष्ठा के स्तर पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर ले, हम कितना भी कह ले हम कर्म मिश्रित हैं, हम ज्ञान मिश्रित हैं, हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, तो वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आपको शुद्ध भक्ति करनी होगी। गाड़ी आपको चलानी आती हो या ना चलानी आती हो, सड़क पे जब आ रहे हैं तो ठीक से चलानी होगी। क्यों जी? आप ये नहीं कह सकते कि मैं सड़क में हूं, मैं चलाना नहीं जानता, मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस है। अरे कोई भी लाइसेंस हो आपके पास, अगर गाड़ी आपने सड़क में निकाल ली है तो आपको ठीक से चलाना होगा गाड़ी को, अन्यथा आपको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा, चलान कर दिया जाएगा, वापस जाओ सीख कर आओ। कैसे आपको लर्नर्स लाइसेंस कैसे मिल गया आपको? पक्का लाइसेंस तो दूर की बात है, लर्नर्स लाइसेंस भी कैसे आपको दे दिया गया? तो उस लर्नर लाइसेंस के पास जिसके पास है उसके साथ एक चालक होता है जिसके पास पक्का लाइसेंस होता है। तो जिसके पास पक्का लाइसेंस है उसके साथ बैठकर उसके सानिध्य में रहकर हमें सीखना होगा कि कैसे गाड़ी चलानी है। इसी तरह से हमारी संस्था में शुद्ध भक्तों के माध्यम से गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सीखना होगा कि शुद्ध भक्ति कैसे करनी। सिंपल सा उदाहरण है, समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाए। अध्याय का एक शीर्षक है भक्ति रसाम सुंदर में, भक्ति कैसे की जाए, लेकिन वास्तव में अध्याय का शीर्षक क्या है? शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, हाउ टू परफॉर्म प्योर डिवोशन सर्विस। तो हमारे इस आंदोलन में मिश्रित भक्ति का कोई भी स्कोप नहीं है, करना भी चाहेंगे मिश्रित भक्ति तो नहीं करने दिया जाएगा आपको। इसलिए यहां का मैनेजमेंट है, इसलिए यहां की जीबीसी बॉडी है, इसलिए यहां पर वैष्णव है, इसलिए यहां पर वरिष्ठ वैष्णव है जो आपको मजबूर कर देंगे शुद्ध भक्ति करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में आपको डाला जाएगा कि शुद्ध भक्ति आपको करना ही होगा। यह फायदा होता है साधु संघ का, इसलिए बोला है कविराज गोस्वामी ने, साधु संघे सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संघे सर्व सिद्धि होए। तो सिद्धि कैसे होगी भक्तों के संग में जो आपको शुद्ध भक्ति कराए। तो ये तो देखिए उद्देश्य हुआ प्रभुपाद जी के इस्कॉन की स्थापना करने का, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन का भी एक गर्भ है, उस गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, माता देवकी के घर में प्रकट हुए, माता यशोदा के घर में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, और इस्कॉन के घर में भी प्रवेश हुए। इस्कॉन के घर में, इस्कॉन के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रवेश किए हैं। अभी सबने समस्त अवतारों के साथ भगवान श्री कृष्ण जो है इस्कॉन के घर में प्रवेश किए। कैसे पता चलेगा? जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे जलदूत में, उस महालबाग जाप में, तो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन नहीं हुआ बल्कि सभी अवतारों का दर्शन किया। सभी अवतार जो है भगवान कृष्ण के साथ हो लिए और जहाज को चला रहे हैं कि मैं हूं जब कप्तान इस जहाज का, तो तुम क्यों चिंता करते हो। तो सभी अवतार, जब भगवान श्री कृष्ण कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं है, तो सभी अवतार भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से फिर कृष्ण भावना को अग्रसर करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो है खतरा मोल लिया अपने जीवन में, केवल हमारे लिए इस संस्था की स्थापना की है। तो प्रचार के लिए आवश्यकता है एक ऑर्गेनाइजेशन की, बिना ऑर्गेनाइजेशन के आप प्रचार नहीं कर सकते, संभव ही नहीं, खासकर आज की परिस्थिति में। एक समाज की आवश्यकता है, एक संस्था की आवश्यकता है। संस्था है तो हम हैं, संस्था नहीं है तो हम नहीं हैं। हमारे भक्त बाहर जाते हैं दान मांगने के लिए, मंदिर के लिए, प्रसाद के लिए, ग्रंथों के लिए, अलग अलग सेवाओं के लिए हम दान मांगने जाते हैं, बाहर प्रचार करने जाते हैं, तो वो लोग इसीलिए दान देते हैं क्योंकि हम इस्कॉन से हैं। हमें तो एक आजीवन सदस्य ने बता दिया कि हमारे एक असिस्टेंट को बताया कि बोले कि प्रभु जी को हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये इस्कॉन से है। उन्होंने बोला, हमारे सामने ही बोला कि प्रभु जी हमारे पास बहुत साल से आ रहे हैं लेकिन प्रभु जी को हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये इस्कॉन से आए हैं। हमारे सामने कितने बाबा लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं, जब आप दान मांगने जाते हैं तो उनको चवन्नी भी नहीं देते लोग, या तो दुत्कार के उनके पीछे कुत्ते दौड़ा के भगा देते हैं। लेकिन इस्कॉन के भक्तों का स्वागत होता है, इस्कॉन के भक्तों का सम्मान होता है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, ये इस्कॉन की कृपा है। तो इसलिए एक इस्कॉन का एक अद्भुत देन है, अद्भुत भेंट है पूरे मानव समाज के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और जो भी इसको स्वीकार करेगा, इस संस्था में शामिल होना चाहेगा, उसका स्वागत है। जो नहीं होना चाहेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी स्वागत है। दूर से संकीर्तन के द्वारा, प्रसाद वितरण के द्वारा उसका भी हम स्वागत करेंगे। और इस तरह से पूरे समाज में इस्कॉन की स्थापना करने का मतलब है। उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा हमसे, उस दिन पूछा कि समाज में दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कैसे होगी। हमने कहा कि इस्कॉन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, ग्रंथों के वितरण के माध्यम से, प्रसाद के वितरण के माध्यम से समाज में दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होगी। जैसे ही कोई भी हरि नाम का उच्चारण करेगा या करता रहेगा तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि वो किस वर्ण का है, किस आश्रम का है। बिना हरिनाम लिए वर्णाश्रम धर्म की भी स्थापना नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। क्योंकि आप दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो बिना संकीर्तन के दैव वर्णाश्रम धर्म स्थापित होगा ही नहीं, क्योंकि यही वास्तव में आपकी कृष्ण भावना का विकास करेगा। और जैसे ही कृष्ण भावना का विकास होने लगेगा आप समझ जाएंगे आप किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए फिर आप शुद्ध भक्ति अगर करते हैं तो फिर आप उस दैवी वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर उठ जाएंगे, वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए भी। माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत येतान ब्रह्म भूयाय कल्पत। तो ब्रह्म भू स्थिति में पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, अब व्यभिचारणी भक्ति करनी होगी। अब व्यभिचारणी भक्ति जैसे ही करेंगे हम लोग क्या, समतीत येतान, गुणों को पार कर जाएंगे और कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो इस तरह से इस बात को समझना है। प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत की और इस संस्था को स्थापित करने के लिए अमेरिका गए, फिलाडेल्फिया गए पहले, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क गए और पेंसिल्वेनिया, उसके बाद न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी देखिए अकेले बिल्कुल ऐसे कड़ाके की ठंड में, कोई नहीं साथ में। आपने देखा उस मूवी में कैसे प्रभुपाद अकेले सड़क पर चल रहे हैं, कोई नहीं उनके साथ, कोई नहीं था उनका स्वागत करने के लिए। ना कोई ट्विटर था, ना कोई यूट्यूब था, कोई फैसिलिटी नहीं थी कि आपका प्रचार प्रसार बैठे बैठे हो गया अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह। और लोग ढूंढ रहे हैं और लोग वेव कर रहे हैं हाथ, ओ स्वामी जी कमिंग लैंडिंग न्यूयॉर्क हार्बर में, सब लोग तैयार खड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए। कोई नहीं था वहां पे, प्रॉपर नहीं जानते थे कि दाएं जाना है या बाएं जाना है। और न्यूयॉर्क की सड़कों में अकेले घूमते रहे वो कुछ अमेरिकन हिपीस, वहां पर मिले प्रभुपाद जी को, जिन्होंने प्रभुपाद जी को एक कमरा दिलाया बावरी स्ट्रीट। कितना कष्ट था उस समय प्रभुपाद जी को, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और 1967 में जब प्रभुपाद जी को फिर से हार्ट अटैक आया, एक तो जहाज में हार्ट अटैक आया दो बार, उसके बाद वहां पे भी हार्ट अटैक आया। और प्रभुपाद जो है टाइपिंग कर रहे हैं अपना अपना जो लिखा हुआ जो लेख है उसको टाइप कर रहे हैं और प्रभुपाद जी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया, फिर से थर्ड टाइम हाथ कांपने लगा उनका। तो ब्रह्मानंद स्वामी खड़े थे निकट, उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ स्वामी जी, क्या हुआ आपको प्रभुपाद, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बस समझ गए कि हार्ट अटैक हुआ है। प्रभुपाद उस समय, उस दौरान प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी थी छिपीवाड़ा के मंदिर में, जो पुजारी थे श्री कृष्ण पंडित, वो चिट्ठी आप जरूर पढ़िएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं उस चिट्ठी में, उसमें बहुत कुछ लिखा लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लिखी है बता रहे हैं आप। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे माया का भय नहीं है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माया, माया कैन नॉट टच मी, माया मुझे छू नहीं सकती है, मैं माया से भयभीत नहीं हूं। आप वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु से आप प्रार्थना करिए, माय हार्ट इज स्टैबिंग मी, यानी कि दिल का दौरा हुआ तीसरी बार और मुझे बहुत चिंता हो रही है कि कैसे ये आंदोलन का प्रचार प्रसार होगा, आप प्रार्थना करो कि सब कुछ सही हो जाए। तो दूसरों के लिए चिंता कर रहे हैं, खुद के लिए भयभीत नहीं है प्रभुपाद, मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए चिंता करते हुए भयभीत हो रहे हैं प्रभुपाद कि क्या होगा इन सबका अगर मैं चला गया। तो प्रभुपाद ने 1966 में स्थापना कर दी 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में, लोअर ईस्ट साइड, और वहां पे स्टोर फ्रंट, और उस दुकान का नाम प्रभुपाद ने रखा था मैचलेस गिफ्ट। ये देखिए यहां पे भी हमने नाम लिखा है मैचलेस गिफ्ट्स, अनुपम भेंट, कृष्ण भावना की अनुपम अनमोल भेंट पूरे मानव समाज के लिए। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डिस्कोर्स ऑन भगवत गीता इवनिंग 7 to 9 PM। आप सब आइए, सादर आमंत्रित हैं, कौन आएगा? तो इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे अपना आउटरीच बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास लोग नहीं आएंगे, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोगों के पास जाना पड़ता था। अक्सर लोग वैश्यों के पास जाते थे, संत महात्माओं के पास जाते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, अकबर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सब वृंदावन जा रहे हैं, शिल जी गोस्वामी से मिल रहे हैं, शिल सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, उनको आना नहीं पड़ता था। लेकिन ये कलयुग की दुर्दशा है कि वैष्णों को जाना पड़ता है प्रचार प्रसार के लिए साधारण जनमानस तक। ऐसे लोगों के पास जो मलेच्छ हैं, यवन हैं, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा भीर यवना शुंभा खशा दया, ये सब वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं है, तो उन लोगों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। और प्रभुपाद पहुंचे वृक्ष के नीचे, बोलते हैं वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में पहला हरिनाम हुआ, उसके बाद टॉमकिन स्क्वायर पार्क में भी हुआ, और वहां हरिनाम में प्रभुपाद जाते और अकेले बैठ गए पेड़ के नीचे और कीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे, संकीर्तन करने लगे, अपने शुद्ध पवित्र नाम का उच्चारण से उन्होंने कई अमेरिकन लड़के लड़कियों को आकर्षित कर लिया और धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, उनके प्रोग्राम में लोग आने लगे, देखते हैं स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। और प्रभुपाद ने संस्था की स्थापना करनी चाहिए और कई लोगों ने सुझाव दिया था, उनके कुछ मित्रों ने कहा कि इस संस्था का नाम होना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा दिस इज अ वेग टर्म, ये शब्द इतना स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है, सटीक नहीं है, आई वॉन्ट एग्जैक्ट वर्ड। प्रभुपाद ने कहा हमारी संस्था का नाम होना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस ये बहुत साइंटिफिक है, एग्जैक्ट वर्ड है, वैज्ञानिक है और बहुत सटीक है ये शब्द कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी पर्सनल। गॉड कॉन्शियसनेस बड़ा ही एब्सर्ड है, यानी कि बड़ा ही इंपर्सनल है, ईश्वर परमात्मा भगवान ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी नेम नहीं है। भक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, दीज आर ऑल व्हाट सेकेंडरी नेम्स, प्राइमरी नेम कृष्ण राम गोविंद, इनका उच्चारण होना चाहिए वेरी वेरी स्पेसिफिक वेरी पर्सनल। गॉड हैज अ नेम, नहीं तो हम भगवान को नाम से पुकारेंगे, पर्सनलिज्म है। प्रभुपाद पर्सनलिज्म को लेकर आए संस्था में, हर चीज में पर्सनलिज्म को लेकर आए। तो इस तरह से यहां पर प्रभुपाद ने एक, प्रभुपाद के पास एक लॉयर आते थे, ज्यूइश लॉयर आते थे, इनका नाम था स्टीफन गोल्डस्मिथ, और उन्होंने सहायता की, उन्होंने कहा कि मैं लॉयर हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, सारा जो लीगल रिक्वायरमेंट था, लीगल जो प्रोसीजर थे, वो सारा ग्राउंड वर्क पूरा किया कि उन्होंने, वो लॉयर ने, और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और फाइनली सिग्नेचर्स के लिए वो प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद उस समय लेक्चर दे रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और प्रभुपाद से कहा कि ट्रस्टीज जो है आपके, उनका सिग्नेचर कराना होगा। ट्रस्टीज कौन से, वही जो आसपास है वही ट्रस्टीज हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ी संस्था के लिए तैयारी हो रही है, वही एक सेंटर है, वही एक ब्रांच है, और वही हेडक्वार्टर्स है, और वही एक स्थान है, और वहां जो लोग रहे वही ट्रस्टी है, सब कुछ वही है और कुछ नहीं है। हाँ तो दिल्ली में एनसीआर में 1400 ऊपर मंदिर हो गए, उस समय केवल एक स्टोर फ्रंट था। प्रभुपाद जी का एक सपना था, एक विजन था, एक पर्पस था, एक मिशन था, एक आंदोलन खड़ा करने के लिए, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए। बहुत बड़ा सोचते थे प्रभुपाद, बहुत बड़ा सोचते थे, छोटा कभी नहीं सोचते थे प्रभुपाद। छोटा सोचने वालों के लिए तो बहुत सारी जगह है, इस्कॉन में नहीं। इस्कॉन में अगर सोचना है आपको तो बड़ा सोचना होगा, हर भक्त को बड़ा सोचना होगा, सब कुछ बड़ा करना होगा हमें, बड़ा विजन, बड़ा पर्पस, बड़ा उद्देश्य, लेकिन अनुकूल भाव से। याद रखिएगा, शुद्ध भक्ति को नहीं छोड़ना है, प्रतिकूल भाव से नहीं, हमें डिवोशन पे ध्यान रखना है, केवल प्रमोशन पे नहीं। अपने प्रमोशन के साथ डिवोशन का जरूर ध्यान रखें, फॉर्म के साथ सब्सटेंस का जरूर ध्यान रखें। इस्कॉन केवल एक फॉर्म नहीं है, इस्कॉन एक सब्सटेंस है, उसके पीछे एक तत्व है, उसके पीछे एक गहरा तत्व है, उसको समझना जरूरी है हम सब भक्तों को इस संस्था में रहते हुए, कि कभी ना भूले हम कोई भी कार्य करते हुए, कोई भी सेवा करते हुए, हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। अगर कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं तो फिर उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर तो ये जो लॉयर आए थे, उन्होंने साइन कराना था ट्रस्टीज के साथ, तो पहले जो पहले साल तीन साल के लिए अलग अलग ट्रस्टीज बने थे, तो पहले ईयर के लिए जो ट्रस्टीज बनाए गए उसमें जो नाम लिखा गया है, जिनका बाद में फिर दीक्षा हुआ कुछ लोगों का, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ, माइकल ग्रैंड जो बाद में मुकुंद दास बने और बाद में उन्होंने संन्यास भी ले लिया, मुकुंद गोस्वामी हिज होलीनेस तो वो भी एक ट्रस्टी थे उसमें, और जैन भी एक ट्रस्टी थी जो उनके साथ आती थी, जानकी माता जी उनका नाम जैन था, और जेम्स ग्रीन ये भी एक ट्रस्टी बने, बाद में इनका नाम पड़ा जगन्नाथ दास। तो एक साल के लिए ट्रस्टी जो ऑफिस को होल्ड करें, तो प्रत्येक वर्ष जो है ट्रस्टीज को बदला जाएगा, और पहले वर्ष जो इन तीन भक्तों को, तीन या चार भक्तों को ट्रस्टी बनाया गया, और दूसरे वर्ष पॉल गार्डनर ये ट्रस्टी बने, और रॉय जिनका नाम दीक्षा का नाम पड़ा राय राम, और उसके बाद डॉन ये तीसरे व्यक्ति थे, और ये हुआ दूसरे वर्ष के लिए। इस प्रकार से ऑफिस बेयरर्स बन गए उस ट्रस्ट के। अब तीसरे साल फिर उसके बाद और भी ट्रस्टी चुने गए, बिल एप्स्टीन बने रविंद्र स्वरूप प्रभु, और कार्ल येगन्स, और उसके बाद फिर राफेल विल, तो ये कार्ल येगन्स बाद में बने करलापति प्रभु, और इस प्रकार ये तीन ट्रस्टीज हुए तीसरे साल के लिए ऑफिस बेयरर्स होंगे। तो इस प्रकार के इन्होंने ट्रस्ट डीड में साइन किया, और इसके बाद इस्कॉन का पंजीकरण यानी कि इनकॉर्पोरेशन हो गया, इस्कॉन की स्थापना हो गई 1966 जुलाई के महीने में। इस्कॉन की जय। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस संस्था में आए हैं। इस संस्था के सामने बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, बहुत संघर्ष रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है, और ये उतार चढ़ाव संस्था में रहा है क्यों, हमारे कारण रहा है, उन भक्तों के कारण रहा है जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए, उन भक्तों के कारण हुआ जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए, इस तरह से संस्था में उतार चढ़ाव आया, और उन भक्तों के कारण ये संस्था चल रही है जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए तो उतार चढ़ाव आया, और ये संस्था चल पा रही है क्योंकि जो शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं, इस कारण से ये संस्था चल रही है। यानी कि श्रील प्रभुपाद जी के पदचिन्हों का अनुसरण करना, यथारूप आज्ञा का पालन करना, ये बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं है। अकेले तो आप हो सकता है आगे का पालन कर लें, एक दो आपके साथ हो फिर भी आगे का पालन हो सकता है, लेकिन एक पूरा वैष्णव समाज हो और उसमें इतनी सारी विविधताएं हो, विचारों की विविधताएं हो, और सबको अलग अलग सेवाएं दी गई हो, अलग अलग व्यवस्था की गई हो, तो ऐसे में मिलजुल कर एक साथ संगठित होकर एक संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाना इतना आसान कार्य नहीं था। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी के जाने के बाद, प्रभुपाद जी 1977 में जब चले गए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी उन भक्तों के लिए जो अभी नौ सिखिए थे, अभी बहुत नए थे, एक बहुत बड़ी संस्था को चलाने के लिए उनके पास उतना अनुभव नहीं था। प्रभुपाद जी ने अपने सामने रखकर उनको बिठाकर खड़ा होकर क्या किया, उनको प्रशिक्षित किया था, लेकिन अभी पूरी तरह से वो पके नहीं थे, और इतनी बड़ी उनको संस्था चलानी थी, और इतना बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना था, तो देश के साथ, सरकार के साथ, समाज के साथ संघर्ष करेगा, युद्ध करेगा, कई सारी चुनौतियां आएंगी जनता के द्वारा, और उन चुनौतियों का सामना करना होगा, और चुनौतियों का सामना करते हुए संस्था को बनाए रखना होगा, भक्तों को बनाए रखना होगा, भक्तों को एक सही दिशा दिखानी होगी, सही मार्गदर्शन देना होगा, कैसे जो प्रभुपाद चाहते थे उसी तरह से भक्तों को आगे जो है वही भाव देना होगा जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। इतना आसान नहीं है एक संप्रदाय को, एक परंपरा को आगे बढ़ाना, विशेष रूप से जब आचार्य चले जाते हैं। आचार्य उपासनम, ये शब्द बड़ा आसान है बोलने में, लेकिन बड़ा कठिन है इसको लागू करना। इस संस्था की जिम्मेदारी को उठाना अपने सर पर, एंग्जाइटी जिसको कहते हैं, चिंता जिसको कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं एंग्जाइटी, परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एंग्जाइटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यानी एंग्जाइटी का लेवल जब हाईएस्ट लेवल पे होता है, ऑफकोर्स जिसको इमिटेट नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं परफेक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब बहुत कोई चिंता कर रहा होता है कृष्ण के बारे में, बिना चिंता के रह नहीं पाता है, जिस तरह से एक उद्योगपति, एक व्यापारी दिन रात धन के लिए चिंता करता है, एंग्जाइटी में रहता है, एंग्जाइटी के अल्टीमेट स्टेज में रहता है और उसके लिए उसको पिल्स खाने पड़ते हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं, नींद गवा बैठता है, खा नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, उसी तरह की एंग्जाइटी जब कृष्ण के लिए होती है, वो परफेक्शन है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, वो परफेक्शन है। इसलिए ये कहते ना कि मैं बहुत रिलैक्स हूं, बड़े कूल हैं आप, बड़े इक्विपॉइज्ड हैं और बड़े पीसफुल लग रहे हैं आप, इसलिए अभी कृष्ण भावना की बड़ी कमी है। अगर हम सोचते हैं हम बड़े संतुलित जीवन बिता रहे हैं और बड़े सेटल्ड हैं और मन में बड़ी शांति है और हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत खुश हैं। यही प्रभुपाद ने बताया था, चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी, आई एम हैप्पी। नो, यू शुड नॉट बी हैप्पी। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, बट ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा शोचती कांक्षती, शोचती कांक्षती कृष्ण के लिए होना चाहिए अगर हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं तो। नहीं तो पीसफुल लाइफ बड़ा अच्छा है जी, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, मंदिर आता हूं, दर्शन कर रहा हूं, वाह क्या प्रसादम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, दैट मीन्स यू हैव नो एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यशोदा शी इज मदर ऑफ कृष्ण बिकॉज शी हैज परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्ण, दिस फिलोसफी नोबडी नोस। तो प्रभुपाद इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि माता यशोदा ने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया, इस कारण से वो माता है, इस कारण से उनको यह अधिकार मिला है, कृष्ण की माता बनने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की और सात उद्देश्य भी दिए, 7 purposes दिए संस्था को बनाने के लिए। बिना उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है? जैसे एक बार लंदन में एक बार किसी ने पूछा था, हमारे जो वो है वाइस चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीवी शर्मा, तो पहले डीटीयू के भी थे, तो उन्होंने पूछा था जब वो बर्मिंघम पीएचडी कर रहे थे तो प्रभुपाद से मिलने गए थे, वो प्रभुपाद मेनोर में आए थे, वो एक और प्रोफेसर चक्रवर्ती थे और दोनों गए थे प्रभुपाद से मिलने। तो प्रभुपाद से पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर मिशन, तो प्रभुपाद ने कहा आई वांट टू क्रिएट ब्राह्मणस, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ब्राह्मणस इन दिस सोसाइटी, समाज में ब्राह्मणों की कमी है, तो मैं ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इस संस्था समाज में ब्राह्मणों की बड़ी कमी है। तो फिर बता रहे थे वो कि एक लेडी रिपोर्टर आई थी, पता नहीं कौन आया था, एक रिपोर्टर आए थे, वो पूछ रहे थे कि स्वामी जी कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय नेक्स्ट लाइफ, मेरा अगला जीवन क्या होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको क्या अच्छा लगता है, उन्होंने कहा मेरे को स्विमिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, पानी में रहना बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद ने कहा विल बिकम फिश इन नेक्स्ट लाइफ। तो बता रहे थे प्रोफेसर शर्मा की प्रभुपाद कितने ब्लंट थे, कितने डायरेक्ट थे, नो कॉम्प्रोमाइज। एक अफ्रीकन डिवोटी आए थे, प्रभुपाद उनको दीक्षा इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि अपना वो सीखा नहीं बांध पा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा जब तक तुम सीखा नहीं बांधोगे तब तक मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। उनके बाल बड़े कर्ली होते हैं अफ्रीकन के, तो सीखा बांधना बड़ा मुश्किल है, और प्रभुपाद ने उनको टेस्ट में डाल दिया, आपको सीखा बांधनी होगी, तुमसे सीखा नहीं बांधोगे तब तक मैं दीक्षा नहीं दूंगा तुम्हें। तो प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था का निर्माण कर दिया और साथ में सात उद्देश्य भी दे दें। पहला उद्देश्य क्या है? टू सिस्टमैटिकली प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल इन द टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब प्रोपोगेट का मतलब है, प्रभुपाद ने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है प्रचार, प्रचार का शब्द, प्रचार मतलब सेल्फलेस। तो डेफिनेशन क्या दिया प्रीचिंग का? प्रीचिंग मीन्स सेल्फलेस ग्लोरियस एडवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड। क्या डेफिनेशन है? सेल्फलेस ग्लोरियस एडवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। ग्लोरियस यानी कि महान कार्य, महान अभियान, जो कि निस्वार्थ भाव से, कोई स्वइच्छा नहीं है, केवल गुरु को, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से प्रचार करना, यानी कि शुद्ध भक्ति की स्थापना करना, सेल्फलेस ग्लोरियस एडवेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो फिर वहां पे बता रहे प्रभुपाद लीलामृत में कि जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, किस तरह से जीसस क्राइस्ट ने किया, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने किया, ग्लोरियस एडवेंचर्स। तो इस प्रकार और क्या है उसका पर्पस क्या है, साथ में ये भी बता रहे हैं कि टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड, असली शांति और सुख पूरे विश्व में इसको प्राप्त करने की इच्छा। और क्या करेंगे, दे वुड सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, सुनियोजित क्या करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करेंगे पूरे संसार भर में, और किस चीज की स्थापना करेंगे, एक संयुक्त राष्ट्र आध्यात्मिक जगत का, यूनाइटेड नेशंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सुनियोजित यानी कि सिस्टमैटिकली प्रोपोगेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, सुनियोजित तरीके से सुचारू रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण किया जाएगा सिस्टमैटिकली। तो यानी कि प्रभुपाद की ग्रंथों को सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे भक्त लोग, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, हर एंगल से उसको समझने का प्रयास करेंगे, परपोर्ट को समझेंगे, वर्ड मीनिंग को समझेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, और अलग अलग कोर्सेस होंगे, भक्ति शास्त्री होगा, भक्ति वैभव होगा, गहन अध्ययन करेंगे ग्रंथों का, समझने का प्रयास करेंगे हमारी फिलॉसफी क्या है, और उसको अपने जीवन में लागू भी करेंगे। और उसके बाद अगला है टू प्रोपोगेट अ कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा एज रिवील्ड इन द स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम, कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना जो कि प्रकट हुआ है किसमें, जो कि दिया गया किसमें, भगवद गीता में, श्रीमद भागवतम में, यानी हमारे प्रचार का जो आधार है वो भगवद गीता और श्रीमद भागवतम है, बुक्स आर द बेसिस। तो भगवद गीता के आधार पर, श्रीमद भागवतम के आधार पर हम प्रचार करेंगे प्रसार करेंगे। और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ आपस में मिला जुला है, क्या पर्पस है, सोसाइटीज मेंबर्स वुड जॉइन टुगेदर एंड बाय हियरिंग द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम। तो क्या करेंगे, सब लोग एकत्रित होंगे, जैसा इकट्ठे हुए हम सब, इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं हम लोग, श्रीमद भगवद गीता श्रीमद भागवतम का श्रवण करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और संकीर्तन करेंगे और अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे कि हम सब जीवात्मा हैं, हम सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक हैं। जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो क्या रियलाइज होना चाहिए हमें, कि वी आर ऑल इटर्नली स्पिरिट सोल्स, वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, वी आर इटर्नली सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, और उसके बाद फिर एंड वी हैव इटर्नल रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब समझने की बात करेंगे, क्या करेंगे पूरे मानव समाज में बड़े स्केल में, बड़े स्तर पर हम क्या करेंगे, इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, इसी दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, ह्यूमैनिटी एट लार्ज, पूरे मानव जाति में बड़े स्तर पर हम लोग प्रचार करेंगे सब समझने के बाद, कैसे, संकीर्तन के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में प्रकट किया है। तो ये है। और उसके बाद फिर क्या है, टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स डेडिकेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बड़े स्तर पर खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे स्थान, तीर्थ स्थान जहां पर भगवान की विशुद्ध लीलाएं होंगी या उनका श्रवण किया जाएगा, उनका कीर्तन किया जाएगा, ऐसे तीर्थ स्थान बना जाएंगे विच इज डेडिकेटेड, विच विल बी डेडिकेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा। तो केवल स्टोर फ्रंट था कि प्रभुपाद जी नहीं सोच रहे थे कि बस इस्कॉन की स्थापना हो गई, माय मिशन इज ओवर, नो, दैट वाज अ बिगनिंग, दैट वाज अ इनिशिएशन ऑफ इस्कॉन। इनिशिएशन का मतलब यह होता है शुरुआत, इस्कॉन न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट में 26 सेकंड एवेन्यू में शुरुआत जो हुई वो इस्कॉन की दीक्षा थी, दैट वाज अ बिगनिंग ऑफ इस्कॉन, वहां से इनिशिएशन हुआ, और उसके बाद वो क्या हुआ, अंकुरित हुआ, फलीभूत हुआ, एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ और पूरे संसार भर में उसकी सारी शाखाएं फैल गई। श्रीवास ठाकुर में शुरू हुआ था पहला संकीर्तन, रात्रि के समय एकादशी के दिन संकीर्तन प्रारंभ हुआ श्रीवास ठाकुर के घर पर, श्रीवास ठाकुर का घर संकीर्तन का हेडक्वार्टर्स है, वहां से शुभारंभ हुआ, और इस्कॉन वो क्या कर रहा है, उसी संकीर्तन आंदोलन को पूरे विश्व भर में पहुंचा रहा है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो इस प्रकार पूरे विश्व भर में संकीर्तन प्रचार प्रसार हुआ, और प्रत्येक स्थान जहां पर प्रभुपाद ने मंदिरों की स्थापना की, शिव विग्रह की स्थापना की, संकीर्तन शुरू करवाया, वो सारे स्थान क्या बन गए, तीर्थ स्थान बन गए। तीर्थी गुरुवंती तीर्थानी, यानी ऐसे शुद्ध भाव जहां पर चरण रखते हैं वो स्थान भी तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद से जब पूछा, एक बार प्रभुपाद से यह भी पूछा था, आत्मतत्व बता रहे थे कि व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग दिस मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, इसके पीछे क्या पर्पस है आपका। उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में, प्रभुपाद ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पूरे पृथ्वी में भगवान के मंदिर बनाए थे, भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था, पूरे विश्व में मंदिरों की स्थापना की थी, जो उन स्थानों में जहां ब्रह्मा जी ने मंदिर बनाए उन्हीं स्थानों में मैं मंदिर बना रहा हूं, श्रील प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद ने यह भी बोला, आई एम री एस्टैब्लिशिंग द ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय की पुनः स्थापना कर रहा हूं। तो पूरे विश्व में जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में मंदिर बनाए थे उन्हीं सभी स्थानों में मैं मंदिर बना रहा हूं। तो कितना बड़ा कार्य देखिए प्रभुपाद जी, यानी कि ये जितने भी मंदिर हैं ये सारे तीर्थ स्थान हैं। कितने सारे तीर्थ स्थान आप प्रकट कर दिए। इसे महाराज कहते ना कई बार कि पंजाबी बाग क्या है, वृंदावन हो गया, और आपका गाजियाबाद हो गया जगन्नाथपुरी, और राधा पार्षादी का मंदिर हो गया कुरुक्षेत्र। तो सारे तीर्थ स्थान यहां पर उपलब्ध है पूरे दिल्ली में, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। एक बार ऐसे भी बोला था महाराज ने, तो कोई बोल रहा था हम धाम जाना है, यहां जाना है, तो महाराज ने कहा यहां पर सब कुछ दे तो दिया मैंने तुम्हें, ये देखो ये रहा नवदीप, बीच में रहे कुरुक्षेत्र यानी कि वृंदावन हो गया, राधा कृष्ण ललिता विशाखा खड़ी है, और उस तरफ राम दरबार है, अयोध्या भी दे दिया आपको, और क्या चाहिए आप। और यहां पर वृंदावन है और साथ में जगन्नाथपुरी भी है, तो क्या समस्या क्या है, कहां जाना क्या है। अगर कृष्ण को ढूंढना है तो यही ढूंढो, बाहर कहां ढूंढ रहे हो। एक बार याद है एक भक्त जो है बरसाना गया था, तो वहां पे हम लोग गए थे, राधाष्टमी का समय था, तो राधाष्टमी का समय था, उसके अगले दिन जब सुबह सुबह अभिषेक हो गया 5 बजे, उसके बाद हम लोग परिक्रमा करते थे। 3-4 साल में वहां गया था राधाष्टमी के दिन, तो रात को रुके थे, फिर सुबह हमने राधा रानी का अभिषेक देखा। 5 बजे करीब अभिषेक होता है, और जैसे ही अभिषेक शुरू होता है बरसात शुरू हो जाती, उसी समय वर्षा होगी, और जैसे ही अभिषेक समाप्त होगा वर्षा बंद हो जाती। ये हर साल होता है, 3-4 साल हमने देखा लगातार। उसके बाद फिर परिक्रमा वगैरह हुई, तो एक भक्त सामने आए, तो हमारे साथ जो महाराज थे उन्होंने पूछा, अरे सरप्राइजिंग, हाउ कम यू आर हियर, आप कैसे आए यहां पर दिल्ली छोड़कर। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज मैं बहुत थका हुआ था इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने आया हूं। महाराज ने कहा कि आप बहुत गलत जगह पे आए हो, उनको नहीं बोला सामने बात बताए, तो बहुत गलत जगह पे आए हैं, उस उतरे बरसाना धाम रिलैक्स करने के लिए। महाराज ने कहा इनका रिलैक्सेशन बड़ा वीक है, इनको दिल्ली में शायद कृष्ण नहीं मिल रहे क्या। तो कहने का मतलब है रियलाइजेशन, कृष्ण भावना भावित जो हो जाता है वो कृष्ण की उपस्थिति, यानी कृष्ण भावना भावित जो हो जाता है वो कृष्ण को सर्वस्व देखता है। सर्वत्र होए वे इष्ट देव स्फूर्ति, निज इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र जहां भी वो देखता है अपने इष्ट को देखता है। इसे कई बार लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, रुक्मणी द्वारकाधीश उनको आपने बांसुरी क्यों पकड़ा दी है, यही उसका उत्तर है, सर्वत्र होए वे निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो जहां भी देखते अपने इष्ट को ही देखते हैं, जहां भी देखते हैं वो देखते हैं बांसुरी पकड़े हुए हैं ठाकुर जी। तो ऐसे भक्त जो है कभी वृंदावन को नहीं बोलते हैं, ऐसे भक्त कभी कृष्ण को नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिस स्थान में वो जाते हैं वो स्थान धाम बन जाता है, क्योंकि धाम को लेकर वो चलते हैं हर जगह। तो ऐसे स्थान को तीर्थ स्थान बना देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, न्यू वेस्ट वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया में प्रभुपाद ने कहा ये स्थान उड़ीपन हुआ प्रभुपाद जी को, जैसे लिखा ना रूप गोस्वामी ने भक्ति के साम सुंदर में उड़ीपन। तो ऐसे स्थान को देखकर उड़ीपन मतलब भगवान की लीलाओं का स्मरण हुआ और वृंदावन का स्मरण हुआ, अरे ये तो गिरिराज जी जैसे लग रहे हैं, अरे ये तो यमुना जी जैसे लग रही हैं, ये तो यहां पर वृंदावन जैसा वातावरण है, ब्रज जैसा आचरण है, दिस इज न्यू वृंदावन प्रभुपाद ने कहा। सैन फ्रांसिस्को को प्रभुपाद ने कहा दिस इज न्यू जगन्नाथपुरी, और लॉस एंजलिस को प्रभुपाद ने कहा दिस इज न्यू द्वारकाधीश या न्यू द्वारका, न्यू द्वारका। तो द्वारका जाने की आवश्यकता नहीं है, लॉस एंजलिस आना चाहिए फिर तो लॉस एंजलिस में उनको द्वारका जाने की क्या आवश्यकता है, दे आर ऑलरेडी इन द्वारका। तो प्रभुपाद ने उन भक्तों का विश्वास बढ़ाया कि आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो कि आप भारत से दूर हो, वृंदावन धाम से दूर हो, यही मैंने वृंदावन प्रकट कर दिया है। अगर आपको श्रद्धा होगी, आपको विश्वास होगा, तो ये सारा श्रद्धा और फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जहां जहां गए प्रभुपाद ने तीर्थ स्थान बना दिया। वो स्थान जो मलेच्छों का था, यवनों का था, चंडालों का था, उन स्थानों को प्रभुपाद ने तीर्थ स्थान बना दिया। ये उनकी कृपा है। उसके बाद टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टूगेदर फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग अ सिंपलर एंड मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। जैसे कि फार्म कम्युनिटीज प्रभुपाद ने डेवलप किया और ये सिखाया कि ये बहुत सहायक है, बहुत अनुकूल है कृष्ण भावना को जगाने के लिए, सरल जीवन और ऊंचा विचार। फार्म कम्युनिटी की बहुत आवश्यकता है आज के समय में। खाने पीने की चीज सारे दूषित होती जा रही हैं, ना आपको हवा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, खाने की चीजों में सब जगह यूरिया भरा हुआ है। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद सोच गए, समझ गए थे कि आने वाले समय में खाने पीने की बहुत दिक्कत होगी भक्तों को और ठीक से कुछ मिलेगा नहीं, तो अभी सही हमें तैयारी करनी है, फार्म कम्युनिटीज डेवलप करना है, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए, अब लैंड ढूंढना चाहिए। ये प्रोजेक्ट आप सब भक्तों का है, हम सब भक्तों का है, ये सेकेंड फेज में हमें करना होगा। एक ऐसी फार्म कम्युनिटी डेवलप करनी होगी पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए सफिशियंट हो, वहां से सबके लिए खाने पीने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था हो, बहुत सारी गायें हो, गौशाला हो, और सीधा वहां से आए ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, जैसे जू टेम्पल में कर रहे हैं। जू टेम्पल में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वहां से आ रहे हैं उनके फार्म से, वहां से दूध आ रहा है, गाय का दूध आ रहा है, राधा राज बिहारी को सीधे भोग लग रहा है। तो इस तरह से फार्म कम्युनिटी जब डेवलप हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट जब हो जाएंगे, सरल जीवन, ऊंचा विचार, और भक्त लोग हुष्ट पुष्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और उनके ब्रेन के जो टिश्यूज हैं स्पिरिचुअली डेवलप होंगे, स्पिरिचुअल टिश्यू डेवलप होंगे ब्रेन में, और ऐसे में भजन करने में आनंद आएगा। नहीं तो हाथ और पांव पकड़ते रहोगे, कभी घुटना पकड़ोगे, कभी हाथ पकड़ोगे, हरे कृष्णा तो कर लोगे, थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। ऐसे में इसलिए क्या है, नेचुरल वे ऑफ लाइफ हमें डेवलप करना होगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और इस तरह से फिर शहरों में रहते हुए भी हम लोग स्वस्थ रहते हुए कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से कर पाए, तो इस बारे में विचार करिए। और उसके बाद फिर लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विथ अ व्यू टूवर्ड्स अचीविंग द एफोरमेंशन ऊपर युक्त पूर्व कथित जो उद्देश्य दिए गए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड अदर राइटिंग्स। प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट, प्रभुपाद लिख सकते थे पब्लिश, और जो प्रभुपाद ने पर्पस बनाए थे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा था खास कुछ, बुक्स तो इतने पब्लिश हुए नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, लेकिन प्रभुपाद का एक विजन था कि पुस्तक वितरण जरूर होगा, अगर प्रकाशित होगा तो वितरण भी होगा, इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉपर स्पेसिफिक बोली बोल रहे हैं पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड अदर राइटिंग्स। तो इस तरह से ग्रंथों का प्रकाशन, इसलिए 1932 में राधा कुंड में श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने प्रभुपाद को क्या आदेश दिया, इफ यू एवर गेट मनी प्लीज प्रिंट बुक्स, अगर आपको धन मिले तो पुस्तकें छापना, और पुस्तकों को छापकर प्रभुपाद ने क्या योजना बनाई, केवल छापा ही नहीं, इतने बड़े विश्व स्तर में, इतनी सारी भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 से अधिक इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इन बुक्स को पब्लिश कराया जा चुका है अब तक, और पूरे विश्व में इसका वितरण भी हो रहा है। ऐसे ऐसे देशों में जहां पर प्रवेश करना भी कठिन था, उन्हीं की भाषाओं में आज श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है, भगवद गीता उपलब्ध है, और इसका वितरण भी कैसे हो रहा है, प्रत्येक 7 सेकेंड में, एवरी 7 सेकेंड कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी की बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारे गुरु महाराज ने बताया, उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं इतने सारे मंदिर कैसे आ गए दिल्ली एनसीआर में, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रंथों का वितरण। जितना अधिक यज्ञ होगा, जितना अधिक प्रचार आप करेंगे, उतने अधिक जो है मंदिर आपको मिलेंगे, उतना अधिक आपको जमीन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये संकीर्तन क्या है, हमारे लिए यज्ञ है, और यज्ञ का फल ये है कि ठाकुर जी प्रकट होते हैं उस यज्ञ से, भगवान प्रकट होते हैं, जब जब यज्ञ किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, सो साक्षात भगवान प्रकट होते हैं शिव विग्रह के रूप में। इसे चैतन्य भागवत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाले समय में दो और अवतार होंगे मेरे, जानते क्या बताया उन्होंने, एक तो शिव विग्रह और एक हरिनाम, हरिनाम के माध्यम से, शिव विग्रह के माध्यम से पूरे पृथ्वी में मैं अपने आप को स्थापित करूंगा, और यह तभी संभव होगा जब आप संकीर्तन करेंगे और ग्रंथों का वितरण करेंगे। जितना ग्रंथों का वितरण आप करते जाएंगे, इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, इस पे जोर देते जाएंगे, आप देखते रहना कि आपको इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी, इतने मंदिर बनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे, और भक्तों की संख्या फिर बढ़ेगी। तो ग्रंथों का वितरण जो है यह महान यज्ञ है, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। जिस तरह से पृथ्वी महाराज ने पूरे पृथ्वी में यज्ञ किया कि नहीं किया, पूरे पृथ्वी में यज्ञ करवाया पृथ्वी महाराज ने, इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने भी पूरे पृथ्वी में संकीर्तन यज्ञ कराया। यज्ञ कैसा होता है, ये कागज कैसे पैदा होता है? प्राचीन समय में तो लकड़ी लेकर आते थे और यज्ञशाला में उस लकड़ी को दिया जाता था ईंधन बनाकर, फ्यूल बनाया जाता था उसका, और इस तरह से यज्ञ हुआ करता था। लेकिन आज के समय में उसी पेड़ से, उसी लकड़ी से कागज निकाला जाता है और कागजों से ग्रंथ छापा जाता है। उन ग्रंथों का वितरण जब भक्त करते हैं तो वो यज्ञ से कम नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। वही लकड़ी है और उसी लकड़ी से कागज आ रहा है, उस कागज से हम ग्रंथ प्रकाशित करते हैं और यज्ञ में भाग लेते हैं, इसलिए संकीर्तन यज्ञ बोला गया है। तो इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आनाकानी ना करें, इस पे आलस ना करें, जब जब संकीर्तन करने का मौका मिले निकल पड़िएगा। क्यों? क्योंकि जो और 6 उद्देश्य हैं इसी के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। पर्पस उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारा जीना जो है बड़ा ही अनुकूल हो जाएगा कृष्ण भावना में, नहीं तो प्रतिकूल कार्य से हम लोग करते रहेंगे। कहने को तो सेवा होगा लेकिन उसका पूरा लाभ मिलेगा नहीं हमें। तो संकीर्तन के माध्यम से सब कुछ संभव है, संकीर्तन में इतना पावर है, इतना पावर है। इसलिए प्रभुपाद ने शुरू करते ही प्रभुपाद ने कहा कि डेली हरि नाम होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट पार्क में, या न्यूयॉर्क में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में, जगह जगह प्रभुपाद ने हरि नाम शुरू करवाया, हरि नाम पार्टी शुरू करवाई प्रभुपाद ने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराया जगह जगह पे पूरे विश्वभर में। तो इससे क्या हुआ, संकीर्तन जब बढ़ा और ग्रंथों का वितरण जब बढ़ा, इतने सारे लोग जुड़ने लगे, इतने सारे भक्त लोग बनने लगे। आप संकीर्तन पे आप फोकस करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करिए, हरि नाम अधिक से अधिक निकालिए, देखिए इतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे कि यूट्यूब और ट्विटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जिससे हम लोग बहुत समय खराब करते हैं कई बार, राइट? तो इसलिए हमें संकीर्तन में जाने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिलता है, ये मत देखिए बरसात हो रही है, आंधी है, तूफान है, निकल पड़िए बाहर। संकीर्तन में एक बार जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, निकलने तक आलस है। एक बार हम निकल जाएंगे बाहर और नाचने कूदने लग जाएंगे, आप भूल भी जाएंगे कि आप बाहर निकले थे, फिर होशो हवास नहीं रहेगा। और साथ में बढ़िया सा प्रसाद भी होगा, चिंता क्यों करते हैं, भूख लगेगी तो प्रसाद भी होगा। जैसे हिसोलन बद्रीनारायण गोस्वामी महाराज ने बड़ा अच्छा बताया उस दिन प्रवचन में, बोलते समस्या क्या है आपको, मेहनत करने से डरते क्यों हो? कर्मी लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात गधे की तरह, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है मेहनत करने में? भूख लगे तो प्रसाद पाओ, थक जाओ तो आराम करो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई यू कांट वर्क हार्ड? ऐसा महाराज बोल रहे थे लेक्चर में। आपको दिक्कत क्या है मेहनत करने में? भूख लगती है तो प्रसाद पा लो, और थक जाते हो तो आराम कर लो, लेकिन संकीर्तन बंद मत करो। क्या प्रॉब्लम है? बाहर के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, इफ यू आर टायर्ड प्लीज टेक रेस्ट, इफ यू आर फीलिंग हंग्री टेक प्रसादम, बट संकीर्तन नहीं बंद करना हमें। तो इस तरह से प्रभुपाद ने इस्कॉन को इनकॉर्पोरेट किया 1966 में जुलाई के महीने में, और हम बड़े भाग्यशाली हैं। बस यही है, अगर प्रभुपाद नहीं चाहते थे, प्रभुपाद ने ये भी बोला जीवन के अंतिम समय में, अगर आप मेरे लिए प्रेम प्रकट करना चाहते हो या प्रेम है आपका मेरे लिए, तो उसका क्या प्रमाण है कि मेरे जाने के बाद आप सब मिलजुल के सेवा कर पाते हो कि नहीं इस संस्था को बनाए रखने के लिए? दैट इज द चैलेंज, दैट इज द चुनौती। बहुत सारे क्लैश होंगे ईगो के, हर व्यक्ति को, हर भक्त को यह लगेगा मैं फॉलो कर रहा हूं, वो बोलेगा नहीं मैं फॉलो कर रहा हूं। कौन डिसाइड करेगा कि कौन फॉलो कर रहा है? बड़ी सारी समस्या हो जाती है आचार्यों के जाने के बाद, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप समर्पित हैं, अगर सिंसियर हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, भगवान हमें बुद्धि देंगे ताकि हम लोग भटके नहीं, घबराए नहीं। इसे याद रखेगा, कल कुछ भी हो जाता है हमें संस्था को छोड़ के नहीं जाना है। कैसे भी करके आप रह जाओ, भले पेड़ बन के रह जाओ। ये देखिए पेड़ है ना, ये पेड़ बड़ा भाग्यशाली है, साधारण पेड़ नहीं है ये। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये पेड़ नहीं काटना, ठीक है ना? बोला क्या बोला यहां के लिए, ये पेड़ ना काटो, इस पेड़ को मत काटना, जिस तरह से प्रभुपाद ने कहा वृंदावन में तमाल वृक्ष जो है वृंदावन में कृष्ण बलराम के सामने, तो उस समय प्रभुपाद ने कहा था इस वृक्ष को नहीं तोड़ना, काटना नहीं इसको, और फिर अप्रकट हो गया वृक्ष, तो दूसरा वृक्ष आ गया, वो भी इतना हरा भरा, इतना विशाल हो गया। तो ये साधारण वृक्ष नहीं है, मंदिर के अंदर जो भी वृक्ष है, पौधे हैं, वो साधारण नहीं है। यहां पर जो चींटी है, मकोड़े हैं, पक्षी हैं, वो साधारण नहीं है, कहीं ना कहीं वो भक्त रहे हैं, और यहां कृष्ण प्रसाद पाके हरि नाम का श्रवण करके अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिल जाएगा इनको। प्रसाद का वितरण कितना बड़ा कार्य है इस आंदोलन का। प्रभुपाल ने कहा प्रसाद देते हैं किसी को, कोई अनजाने में प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो अगले जन्म में कम से कम उसको मनुष्य का शरीर मिल जाता है। एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, कितनी जल्दी जो है प्रोग्रेस हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है कि अगले जन्म ही आपको मनुष्य का जीवन मिल जाता है। तो ये आंदोलन जो है कितना भला कर रहा है, कितना लाभ पहुंचा रहा है पूरे समाज को। तो इस तरह से हमें अगर पेड़ बन के भी जीना है तो जी लो, पेड़ बनकर भी जीना है तो जी लो, लेकिन छोड़ो नहीं तो जैसे तैसे करके। बड़ा अच्छा उन्होंने बताया श्रीधर स्वामी ने भागवत की इस टीका में, वो जो श्लोक है ना, क्या श्लोक है वो, मैं भूल रहा हूं श्लोक, तत्तेनुकंपान सुषुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग बपुर भीर विदधम नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे स दाय भाग। दाय भाग उत्तराधिकारी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि लड़का अगर घर में नालायक भी हो, बदमाश भी हो, बदतमीज भी हो, अगर वो घर में रह जाता है, उसकी योग्यता क्या है कि वो घर में रह रहा है, उसकी और कोई योग्यता नहीं है, काम भी नहीं करता है, बिल्कुल नालायक है, और क्या करता है, बदमाशी भी करता है, नालायकी भी करता है, लेकिन घर नहीं छोड़ता है, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं उसको क्या लाभ मिलेगा, मुक्ति पदे स दाय भाग। दाय भाग मतलब उत्तराधिकारी बन जाएगा, उसके पिता का सारा धन उसको मिल जाएगा नालायक होने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब यह है, बिल्कुल वही बात यहां पर लागू होती है हमारे लिए। लायक हो नालायक हो, कैसे भी हो, गिरे हो उठे हो, रह जाइए बस संस्था में भक्तों के साथ। अरे भक्तों को सहन करोगे तो कृष्ण का स्मरण कराएंगे, आपके पास चॉइस है, भक्तों को सहन करो या माया को सहन करो। माया को सहन करोगे तो माया अपना स्मरण कराएगी, भक्तों को सहन करोगे तो कृष्ण का स्मरण कराएंगे। तो अच्छा है कि भक्तों को सहन कर ले, भक्तों को सहन करने में दिक्कत जरूर होती है, लेकिन अगर हमने सहन कर लिया, जैसे तैसे कैसे भी करके रह गए संस्था में, भक्तों के संग में जीवन के अंत काल तक सांस लेते रहे संस्था के अंदर, तो उसमें भी भला है, कोई नुकसान नहीं है, वो भी अपने आप बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई जीवन भर संस्था में रह जाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर कोई शुद्ध भक्ति करके रह जाए तो फिर वो तो चला ही गया भगवान के धाम में। तो हम इस सबसे इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हम सबको संघर्ष करना है। इसलिए ससुरदास गोस्वामी महाराज ने बड़ा अच्छा बताया था एक बार कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। हमें निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा संघर्ष करते रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, संघर्ष तो करना ही होगा, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। या तो कृष्ण के लिए कष्ट उठाओ या माया के लिए कष्ट उठाओ। कृष्ण के लिए कष्ट उठाओगे तो कृष्ण के पास जाओगे, माया के लिए कष्ट उठाओगे तो माया के पास जाओगे। चॉइस हमारा पास है कि नहीं। लेकिन कष्ट केवल आपको एक जीवन के लिए उठाना है। आ ब्रह्मा भुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेते थे कौन थे आप पुनर्जन्म ना विद्यते। एक बार कष्ट उठा लो, एक लाइफ डेडिकेट कर दो कृष्ण के लिए, अगले जन्म में कष्ट नहीं होगा। लेकिन जो कहते हैं कि हम भी कष्ट उठा रहे हैं तो बार बार कष्ट आएगा, बार बार जन्म होगा, बार बार व्याधि होगी, बार बार बुढ़ापा होगा, उस चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें कृष्ण के लिए कष्ट उठाना होगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये प्रिविलेज, प्रभुपाल ने कहा कि मेरे प्रिविलेज आप मुझसे मत छीनिए, कृष्ण के लिए कष्ट उठाने का प्रिविलेज जो है मुझसे मत छीनिए आप, लेट मी स्ट्रगल फॉर कृष्ण। तो भक्त बड़े भाग्यशाली हैं जिनको कृष्ण के लिए संघर्ष करने का मौका मिलता है। तो हर भक्त को हमारी संस्था में छोटी बड़ी सब जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, जितना हो सके गुरु के मार्गदर्शन में जिम्मेदारियां लेते जाएं संस्था के लिए, और ये सोचें कि हमारा घर है, हमारी संस्था है, हमें किस तरह से इसको इंप्रूव करना है। कई लोग बोलते हैं हम घर जा रहे हैं, अरे घर यही है आपका, और कोई घर नहीं है, राधिका रमन जी का घर ही आपका घर है, और कौन सा घर है? बाकी सब जगह से तो आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा, यू विल बी किक्ड आउट। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे, दे विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दैट बिल्डिंग, लेकिन यहां पर ये असली आपका घर है, राधिका रमन जी का घर है, कृष्ण बलराम का घर ही आपका घर है, और कोई घर नहीं है। सपना मत देखिए कोई और घर है आपका, मैं छुट्टियों में जा रहा हूं घर, कौन सा घर? यही है घर, यही है आपके माता पिता, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, सब कुछ यही है। सर्वस्व अपना दे दीजिए यहां पर, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान गीता में कह रहे हैं सब धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, बस। और कहां जाने की आवश्यकता, और क्या सोच रहे हो आप, क्या सपना देख रहे हो, मैं गांव जा रहा हूं, व्हाट नॉनसेंस। अरे गांव ही जाना है तो ब्रज में जाओ, वो है असली गांव। और यह शुरुआत यहां से होती है, रास्ता यहां से है ब्रज में जाने का, तो इस रास्ते को अपनाइए, इस गांव को मत छोड़िए, इस घर को मत छोड़िए, यही है आपका घर, यही है सपनों का घर, यही पे सपना देखिए। सपना भी देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, राधिका रमन के चरण में, शरणों में रहिए, और उनकी शरण में रहकर आपको सब कुछ मिलेगा। डरिए मत, मा शुचा, भगवान कह रहे हैं गीता में डरो मत। डर क्यों रहे हम लोग, किस लिए डर रहे हैं? एट द मोस्ट क्या होगा, मर जाएंगे ना, तो मर जाए, वैसे ही मर रही है, इससे ज्यादा क्या हो सकता बताइए संसार में, मरने से अधिक और क्या हो सकता है संसार में बताइए, और कुछ हो सकता है? तो वही तो होगा। तो अच्छा है कि कृष्ण के लिए युद्ध भूमि में मर जाए, नहीं ये मरना भी जो है असली मरना हुआ, शहीद हो जाओगे आप कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में मरोगे तो शहीद हो जाओगे, अमर हो जाओगे। यही है भक्ति रसामृत सिंधु, हमारा जो आंदोलन है इस्कॉन, ये है भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति रसामृत सिंधु है, ये रसों से भरा हुआ सागर है, और जो इस भक्ति रसामृत सिंधु में रहेगा वो कभी मरेगा नहीं, भले उसको तैरना ना भी आता हो, लड़खड़ाना हो, लंगड़ा हो, पंगू हो, गूंगा हो, कुछ भी हो, अगर वो इस समुद्र में रह जाता है वो मरने वाला नहीं है। बार बार इस रसामृत का पान करके उसकी एक एक बूंद अगर उसके मुंह में घुस जाती है तो फिर बस वो जीता रहेगा, जीता रहेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भूवि भावुका, रसमालयम जीवन पर्यंत जीवन उस रस का आस्वादन करता रहेगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु को यानी कि इस्कॉन को छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या आपको लाभ मिलेगा, तो फिर भक्ति रसाम सिंधु में हम चिंता रहेंगे तो हमें कर्म ज्ञान की चिंता नहीं है, मुक्ति की चिंता नहीं है, सब द्वार पे खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहीं खड़े हैं, भीतर नहीं प्रवेश कर पा रहे हो, उनको वही खड़ा रहने दीजिए, आप सब सेवा में व्यस्त रहें, इस तरह से हम सब सेवा में व्यस्त रहें और इसका पूरा आनंद लें, भरपूर आनंद लें, जीवन को सफल बना लें। एक ही जीवन मिला है, हम बड़े भाग्यशाली हैं इस माया के जगत में, हमें इस्कॉन में आने का मौका मिला। लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं बाहर, आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। लोग वाकई में बहुत कष्ट पा रहे हैं, वाकई में बहुत पीड़ा में, वाकई में बहुत दुखी हैं लोग, बहुत हताश हैं लोग संसार में, उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है इस संस्था के माध्यम से। यही एक वास्तव में जहाज है जो प्रभुपाल ने बनाया है, जिसकी शरण लेकर, जिसका आश्रय लेकर हम भव सागर को पार कर सकते हैं, ये वो जहाज है। तो इस जहाज से उतरेगा मत, एक दिखा ना वो जो न्यू भक्ता प्रोग्राम का मैनुअल है जो दानवीर बारा ने लिखा है, उसमें दिखा रहा है कि जो व्यक्ति है वो जहाज से कूदने की कोशिश कर रहा है क्योंकि समुद्र में आ गया, आंधी तूफान आ गया, नीचे एक और बोट है जो उस जहाज के साथ लगा हुआ है, वो सोच रहा कूद कर मैं उस नाव में चढ़कर समुद्र पार कर जाऊंगा, ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। जहाज में कैसे भी रह जाओ, थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा, बच जाओगे, लेकिन अगर आप कूद के उस नाव में चले गए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए है कि भक्तों के साथ रह के उस जहाज में रहे, शुद्ध भक्तों की शरण में रहे, कहीं जाने की आवश्यकता ये मन में कभी मत लाइए कि मुझे कहीं और जाना है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, सबसे बड़ी नालायकी होगी, सबसे बड़ी गद्दारी होगी। अगर हम बाहर जाने का सोच भी रहे तो प्रभुपाद जी को छोड़ के बाहर जाने का अगर विचार भी कर रहे हैं मन में, इस विचार को बाहर निकाल दीजिए। जैसे भी है आप, भले गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, ब्रह्मचारी हो, आप जुड़े रहिए संस्था से कृष्ण भावना भावित होने के लिए, और कोई स्थान नहीं है पूरे संसार में इससे सुलभ और इससे सुरक्षा देने वाला, और कोई भी संस्था नहीं। देखिए अल्टीमेटली देखिएगा केवल इस्कॉन ही रह जाएगा, ऐसा समय आएगा कलयुग में कि इस्कॉन ही रह जाएगा हर जगह, और यही एक जगह रह जाएगी, स्थान रह जाएगी जो सुरक्षित होगी आध्यात्मिक जीवन के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? तो इनकॉर्पोरेशन के दिन जो है कुछ फीस्ट की व्यवस्था है कि आज के दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ? महाप्रसाद तो मिल ही जाएगा थोड़ा थोड़ा सबको। किसने कहा यह संस्था भौतिक है? आप किस बेस पे कह रहे हो कि इस्कॉन एक भौतिक संस्था है? पहले ये प्रूव करो। आप पहले ये प्रूव करो कि आप बता रहे हैं कि भौतिक संस्था है, इसको आप प्रूव करके दिखाओ। पहले प्रूव करके दिखाओ कि इस्कॉन एक भौतिक संस्था है। और कोई प्रश्न है? माधुर्य रस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माधुर्य रस। जो बाहर जाते हैं उनको महामंत्र नहीं मिलता है, इसलिए माधुर्य रस उनके लिए और कठिन है। और बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड टेंशन फ्री लाइफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए। माइक शायद काम नहीं कर रहा, ऐसे बोल लीजिए।
ऐसे अक्सर होता है कि बहुत सारे इश्यूज को लेके इतने सारे वैरायटी ऑफ ओपिनियंस होती हैं, और हर कोई प्रभुपाद का कोट ही दिखाता है, और हर इतने सारे डिफरेंसेस, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या सही है क्या गलत है, कैसे निर्धारित किया जाता है? इस कौन से जुड़ने का मतलब शायद यही है कि जो प्रभुपाद का जो एक्चुअल संदेश है,
तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नो नाशो ऋषिर मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहित गुहायम महाजनो येन गतः सपन्था। तो लोग तर्क करते हैं आपस में, डिबेट्स होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि वास्तव में महाजन क्या आगे गए हैं। सो दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो द अथॉरिटीज, गुरु परंपरा। इसलिए हमारे संस्था में ये सब बनाया गया, जीबीसी बॉडी बनाई गई है। क्यों बनाया गया? प्रभुपाद की टीचिंग्स को किस तरह से समझना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है, दैट्स वाई वी हैव दिस बॉडी। नहीं तो कोई लेटर से कोट करेगा, कोई कन्वर्सेशन से कोट करेगा। द मोस्ट ऑथेंटिक कोट इज प्रभुपाद बुक्स, बाकी तो सर्कमस्टांसेस हो सकता है।
महाजन में ही अगर तर्क हो रहे हैं तो
महाजनों में तर्क होता है, लेकिन उसके बाद निष्कर्ष भी निकालते हैं। महाजनों में जब तर्क होता है तो उसमें निष्कर्ष भी निकलता है, इसलिए उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? अगर तर्क नहीं होगा तो फिर हमारी संस्था मायावादी हो जाएगी, हम सब एक हैं, सबका एक ही विचार है। नहीं, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। जिस मीटिंग में इश्यूज ना हो, जिस मीटिंग में वैरायटी ना हो, जिस मीटिंग में मतभेद ना हो, वो मीटिंग तो बहुत नीरस हो जाएगी। उस मीटिंग की आवश्यकता ही क्या है? वो जो हेड वैसी इंस्ट्रक्शन दे दे, सब फॉलो करने लग जाएंगे, मीटिंग की क्या आवश्यकता है फिर? अगर इतना बढ़िया समर्पित है सारे, तो बस वरापुरो या रुक्मिणी श्लोक कहेंगे, दैट इज डन। व्हाई यू नीड टेंपल काउंसिल, व्हाई यू नीड ब्रह्मचारी काउंसिल, व्हाई यू नीड कंग्रेगेशन के लिए कमिटी है, ये फलाना ढकाना करना पड़ता है, इतना टेंशन है इतने लोगों को इकट्ठा करना, बस ऑर्डर पास हो गया ऊपर से, भाई यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत्वतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते, बस उतना काफी है फिर। लेकिन क्योंकि है नहीं, और एकता में भी विभिन्नता है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, ये हमारी फिलॉसफी है, अचिंत भेदावे तत्व है, ये बात सही है, हम सब एक हैं सब, लेकिन विचार अपने अपने हैं, तभी तो उसमें मसाला होगा, मसाला होगा, कटलेट होगा, आलू होगा, टमाटर होगा, सब कुछ होगा, प्यार नहीं होगा, लहसुन नहीं होगा, क्रीम होगा, चीज होगा, सब कुछ होगा, वैरायटी होगी, तभी बड़ा आनंद आएगा। अगर डेली होटल का खाना पड़ा तो क्या फायदा, और डेली आपको खिचड़ी खिलाएं तो आप नीरस हो जाओगे, बोर हो जाओगे, भाई क्या यार रोज खिचड़ी खिलाते जा रहे। ठीक है, हम तपस्वी हैं, एक बार किसी भक्त को ना प्रसाद खिला रहे थे और डेली एक ही चीज खिला रहे थे, तो वो जो भक्त बड़े गुस्से हो गए, उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते मैं जानवर हूं। वो इतना भक्त इतना गुस्सा हो गया, बोलते तुम रोज भाई पालक ही बनाते जा रहे हो, उबाल के देते जा रहे हो मुझे। वो फ्रस्ट्रेट होके बोलने लगे, और ऐसे है कि नए भक्त काफी पुराने भक्त है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके बोले, व्हाट इज नॉनसेंस, यू थिंक आई एम एनिमल। सो देयर इज अ वैरायटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हर भक्त को अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार है, तभी तो आनंद आएगा। हाँ जी यस यस, वो तो हाँ हाँ संप्रदाय में होता है, हमारा हाँ हाँ संप्रदाय नहीं है, हमारा हाँ भी है और ना भी है, दोनों मिक्स है, वन एंड डिफरेंट, तभी उसमें मजा है, वैरायटी है, मजा आता है उसमें, नहीं चटनी भी है, चॉकलेट भी है, आप चॉकलेट मतलब वो वाला कैरमल वाला है, और उसके बाद स्ट्रॉबेरी भी है, फ्रूट क्रीम भी है, सब मीठा है, लेकिन फिर भी वैरायटी है, रसगुल्ला मीठा है, हलवा मीठा है, गुलाब जामुन मीठा है, संदेश मीठा है, सब मीठा है, चमचम मीठा है, जलेबी मीठी है, सब मीठा है, लेकिन फिर भी अलग है, वन एंड डिफरेंट। ये फिलॉसफी आपको हर जगह मिलेगी, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, दूध से दही बन रहा है, दही से मक्खन बन रहा है, मक्खन से घी बन रहा है, सब मिलकर प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी वैरायटी, वन एंड डिफरेंट। नहीं, डिफरेंसेस से क्या होता है, और आनंद आता है, मीटिंग अटेंड करने का जो इंटरेस्ट पैदा होता है। नहीं तो मीटिंग में जाएगा कौन अगर मसाला ना हुआ था, आज का इश्यू क्या है, मजा आएगा, हम भी अपने पॉइंट्स रखेंगे, उसमें इंटरेस्ट। नहीं तो सभी एक ही बात बोलने वाले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, व्हाट इज दिस, सो बोरिंग, इट्स नॉट गुड। हाँ, बट निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए, अल्टीमेट कंक्लूजन होना चाहिए, इसको मिनट करना होगा, इसलिए मिनट किया जाता है, क्योंकि दैट मिनट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, इस संडे को जो है दोपहर में सबको खिचड़ी खिलाया जाएगा, भले दो लोग आए, दैट इज द कंक्लूजन। हमारे यहां शुरू किया था ऐसे कि हमने खिचड़ी कर दिया था चार महीने के लिए, संख्या कम हो गई, 1000 से लोग घट के 150 हो गए, और हमें 8-10 लाइफ मेंबर ने चिट्ठी लिखी, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खिचड़ी लाकर जो है एक बहुत बड़ी क्रांति लाए मंदिर में, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, आगे चलकर कभी मत बदलेगा, फीस प्रसाद कभी मत लाएगा, इतना आनंद आ रहा है, गरम गरम खिचड़ी प्लेट भर के मिलती है हमें, और दोबारा किसी कारण से दोबारा फीस शुरू करना पड़ा, तो दोबारा उन लेटर आ गया उन लाइफ मेंबर से, प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, दोबारा आपने शुरू कर दिया, वही आतंक मचेगा, फायदा क्या हुआ बताइए, आपने इतना बढ़िया किया हुआ था खिचड़ी तो। लेकिन हम लोगों का जो क्या अंडरस्टैंडिंग यही है कि वैरायटी होनी चाहिए, दैट शुड बी साइमेंट। अगर लाइफ सिंपल प्रसाद भी करना है तो एक दिन खिचड़ी करो, एक दिन पाव भाजी करो, एक दिन जो है वो आप दलिया कर दो, एक दिन कुछ और कर दो, तो सिंपल सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप रोज खिचड़ी खिलाओ, नहीं, कई बार बोलते हैं प्रभु जी सिंपल प्रसाद है, सिंपल का मतलब ये थोड़ा रोज घिया खिलाओगे, कई बार तो घिया देख देख के हम लोग बस चुप रहते हैं आजकल, इसलिए हम बोलते नहीं प्रसाद लेते, उसका रीजन यही है कि बोलने से दिक्कत होती है कि क्या बोले, आप घिया खिला रहे हो तो चुपचाप लेते रहते हैं, तो उससे क्या टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है, और मन ही मन लेकिन वैरायटी की उम्मीद जरूर करते हैं, लेकिन जैसी वैरायटी सामने प्रकट होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है अंदर से। तो विविधता में एकता या एकता में विविधता, यही हमारा सिद्धांत है, और इसी के लिए हमें आशा करनी चाहिए, इसी में अपना जीवन बिताना चाहिए हमें। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।